Bhagavad Gita as it is, chapter 2, contents of the Gita summarized, text 45. Taraipunya visya veda nistray gunyo bhavarjuna nirdvando nitya sattvastho niriyog chema atmavan. Translation and purport by Srila Prabhupada. Translation: the Vedas deal mainly with the subject of the three modes of material nature. O Arjun, become transcendental to these three modes. Be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety, and be established in the Self. O Mangyanati Vedantasya Gyanam Janam Sanatya Chachurvimata Vedantasya Sikunye Nama Nama Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutaleshwate Bhaktivedan Swamiti Namne Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharane Nirvishe Shunyavadi Paschati Desitarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaurav Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. तो हम पढ़ रहे थे भगवद गीता. तो जो 42वां और 43वां श्लोक था उसमें भगवान ने एक शब्द उपयोग किया था, वेदवाद रता. वेदवाद रता बताया कि जो वेदों में अलंकारिक भाषा होती है, अलंकारिक भाषा मतलब कि ये पालन करने से आपको ये मिल जाएगा, ये पालन करने से आप ये मिल जाएगा, तो उसके प्रति लोग बहुत अटैच हो जाते हैं और जो वेदों का जो प्रमुख उद्देश्य है उसको नहीं समझ पाते, है ना. जैसे उदाहरण बताया गया कि कई ऐसे वृक्ष होते हैं जिनके जो फूल होते हैं बहुत ही दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर उनको सूंघेंगे तो क्या होगा, मृत्यु हो सकती है, बेहोश हो जाती है कई बार, है ना. तो इसी तरह जो वेदों की जो अलंकारिक भाषा है ना? अगर उससे हम आकर्षित हो गए और वेदों के जो प्रमुख उद्देश्य है उसको भूल गए तो वो कैसे होगा, गड़बड़ हम देख भ्रमित हो जाएंगे, है ना. लेकिन वो अलंकारिक भाषा बनाई क्यों गई है, उसका भी पर्पज है, जिससे लोग अगर भोग करना है तो वेदों के विरुद्ध जाके भोग नहीं करें, वेदों की बाउंड्री के अंदर ही भोग करें. क्यों? क्योंकि वेदों की बाउंड्री के अंदर भोग करेंगे तो प्यूरिफिकेशन होगा, और वेदों की बाउंड्री के बाहर जाके भोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाप कर लेंगे. जैसे इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, ये सब क्या है, वेदों के बाउंड्री के बाहर जाकर हम भोग करने का प्रयास करें. लेकिन केवल अलंकारिक भाषा ही अंत नहीं है. फिर हमने देखा था कि वेदों में अधिकतर जो 90% भाग है वो क्या है, कर्मकांड. तो वो कर्मकांड क्यों है, इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि अधिकतर लोग तो क्या है, भौतिक इच्छा को लेकर आए. कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मुझे भक्ति करना है या समझना है, है ना. जैसे प्रचार करते हैं, आपके हॉस्टल में आए थे तो शुरू में कितने लोग आते थे, 50 लोग आते थे. फिर धीरे धीरे एक सेकेंड सेमेस्टर में कितने बचे, 12 लोग. उसके बाद लास्ट में कितने बचे, तो आप बेस में कितने आए, 3 लोग. 4 आए थे, एक शहीद हो गया. 3 लोग बचे. तो 50 से चालू हुआ और 3 लोग बचे, कितना रेशो आया, 6%. 6% आया कि नहीं. तो वेदों में कर्मकांड कितना है, 90%. 10% में कुछ ज्ञान कांड है और कुछ थोड़ा सा भक्ति. तो क्यों है, क्योंकि तो ज्यादातर लोग तो भोग ही करना चाहते हैं. अभी आप देखो, अभी हम सोचे अगर थोड़ा सा, आपको वहां हॉस्टल में आपको प्रसाद ही मिल रहा है, आपको सुनने को मिल रहा है, फिर भी लोग नहीं आना चाहते. और फिर बेस में प्रोग्राम हुआ तो आपको गाड़ी से लेके भी आ रहे हैं, गाड़ी से छोड़ भी रहे हैं, और प्रसाद भी, और आपको सुनना भी है भगवद गीता जैसी उच्च कितना इंपॉर्टेंट लिटरेचर सुनना है, फिर भी लोग नहीं आते. तो हम समझ सकते हैं कि लोगों के अंदर क्या भावना है, कोई रुचि है ही नहीं, कोई इंटरेस्ट है ही नहीं सुनने का, केवल संसार में एंजॉय करना है, भोग करना है. इसीलिए वेद व्यास जी ने जो वेदों का निर्माण किया उसमें ज्यादातर क्या रखा, कर्मकांड रखा, क्योंकि पता है होने वाला है. करेक्ट। तो त्रैगुण्य विषया वेद, तो भगवान क्या बता रहे हैं कि वेदों में अधिकतर तीन गुणों के बारे में चर्चा है ना। द वेदास डील मेनली विद द सब्जेक्ट ऑफ द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, तीन गुणों के बारे में चर्चा। लेकिन निर्द्वंदो नित्य संतुष्टो निर्योग क्षेम आत्मा, कि अर्जुन तुम ये तीन गुणों से ऊपर उठो, है ना, और जो वेदों में का जो प्रमुख उद्देश्य है उसको जानने का प्रयास करो, है ना। वेदों के क्योंकि अभी हमारी इतनी शक्ति नहीं है, मतलब स्मरण शक्ति नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है कि हम वेदों को समझ पाए, है ना। अगर हम संस्कृत के श्लोक याद करेंगे तो श्लोक याद करने में क्या हो जाएगा, हालत खराब हो जाती। अभी आज मंगला आरती गाया तो मंगला आरती में कितने कितने सारे बीच बीच में प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हुआ, है ना। जिसको हम रोज गा रहे हैं, जिसको हम रोज गा रहे हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो रहा है। तो जो वेद है, वेद में तो कितना उच्चारण करना, कितने उच्चारण नहीं करना, उसको याद भी करना है। तो कलयुग के लोगों के लिए तो संभव ही नहीं। तो कलयुग के लोगों के लिए क्या है, वेदों का जो उद्देश्य है, पर्पज है, उसको प्रभुपाद जी ने बता दिया। ऐसे मान ली सिंपल उदाहरण है कि खाना बनाना, तो खाना कैसे बनता है, कोई बताएगा आप लोगों को खाना कैसे बनता है? कुणाल
कुछ नहीं, तो मतलब
रोटी, रोटी कैसे बनाते हैं?
गैस पे उसका ये होता है फ्लोर से आटा,
आटा होता है,
आटा होता है,
आटे गूंथते हैं, फिर
बेलते हैं,
बेलते हैं,
उसका सेकते हैं,
सेकते हैं, तो ये ऐसे रोटी बनती। लेकिन ऐसे नहीं, रोटी ऐसे ही बनती। रोटी कैसे बनती है, पहले जो कुएं में जो जो समुद्र के नीचे जो कुएं होते हैं उसमें पेट्रोल होता है, उसमें नेचुरल गैस होती है, और नेचुरल गैस को प्यूरीफाई किया जाता है, उसमें से एलपीजी निकलती है, फिर एलपीजी के सिलेंडर में भरा जाता है, ठीक है। फिर जो चूल्हा है वो फैक्ट्री में बनता है, उसका भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। फिर चूल्हा आ जाता है, उसका एक पाइप आता है, पाइप किसका होता है, प्लास्टिक का होता है या रबड़ का होता है, रबड़ भी क्या होती है, प्लास्टिक इंडस्ट्री बनती है। फिर तीनों को जोड़ा जाता है, फिर जो गेहूं है उसको ऐसे उगाया जाता है, तो गेहूं इतने 6 महीने के बाद कटता है, फिर वो आता है चक्की में पीसा जाता है। तो अगर किसी को ऐसे समझा जाए बोले तुम रोटी बनाओ खुद खा लो, मुझे नहीं खा, मुझे रोटी नहीं खाना। तो वेदों में ऐसे ही, अभी सिंपल है, रोटी आटा खरीद के लेके आए, आपने बनाया, ऑफर किया और खा लिया, तो ये उसका पर्पज हो गया, कैसे बनाते हैं। लेकिन एक क्या है, वो कैसे गैस निकली, कैसे सिलेंडर बना, कैसे पाइप आया और कैसे बनाया, फिर और भी उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो फ्लेम है उसने इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये सब केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेटलर्जी, ये सब जानने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। तो वेदों में क्या है, अंततः तो यही बताएंगे कि रोटी कैसे बन रही है, कैसे खाना है, लेकिन उसका इतना लंबा प्रोसेस होगा, इतना लंबा प्रोसेस होगा कि वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, उसको समराइज फॉर्म में दे दिया। अब आगे के श्लोक पढ़ेंगे। यावान अर्थ उदपाने सर्वता संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, ऑल पर्पसेस सर्व बाई स्मॉल वेल कैन एट वंस बी सर्व बाई ए ग्रेट रिजर्वायर ऑफ वॉटर। सिमिलरली ऑल द पर्पस ऑफ द वेदास कैन बी सर्व टू वन हू नोज द पर्पस बिहाइंड देम। तो गांव में क्या होता है कि अलग अलग कुएं होते हैं, यहाँ तो सब शहर के हैं लेकिन गांव में अलग अलग कुएं होते हैं। तो एक कुआ होता है जिससे आपको किचन के काम है उसमें उसको यूज किएगा, एक कुआ होता है जहां पर जो पशु होते हैं, भेड़ बकरी होते हैं उनको धोते हैं, एक कुआ होता है कपड़े धोए जाते हैं, एक एकदम सेपरेट कुआ होता है जो डीटीज के लिए होता है, जहां पर डीटीज के लिए पानी लिया जाए। तो अलग अलग कुएं होते हैं, लेकिन जो नदी है जहां पर पानी बह रहा है वहां पर आप कपड़े भी धो सकते हैं, इवन डीटीज को भी ले जा सकते हैं, वो भी जैसे गंगा नदी है तो गंगा नदी का पानी लेके डीटीज का अभिषेक भी करा सकते हैं, खाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे कुएं हैं, एक कुएं से एक पर्पज हो रहा है, एक कुएं से एक पर्पज हो रहा है, इस कुएं से दूसरा पर्पज हो रहा है, लेकिन जो बहती हुई नदी है उससे सारे पर्पज सॉल्व हो रहे हैं, है ना। तो वेदों में ऐसे क्या है, अलग अलग संहिताएं हैं, अलग अलग उपनिषद है, इस उपनिषद में है, इस संहिता में ये है, तो इतने सारे अलग अलग संहिताओं को उपनिषदों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसका जो एसेंस है उसको अगर निकाल लेंगे तो बात पूरी हो जाएगी। तो वेदों का एसेंस क्या है, अंततः एसेंस किस पे आ रहा है, जैसे जो वेद व्यास जी है उन्होंने सारे वेदों की रचना की है ना, और वेदों की रचना करने के बाद वेदों को एक शॉर्ट फॉर्म में दिया जिसको बोलते हैं वेदांत सूत्र, है ना, वेदांत सूत्र। तो उन्होंने फॉर्मूलेज बनाए, ऐसे सूत्र बनाए जिसमें वेदों की पूरी शिक्षाएं थी, लेकिन वो जो वेदांत सूत्र बनाया वो भी लोगों को समझ नहीं आ रहा था, तो उसमें आगे चल के टीका लिखी गई, और वेदांत सूत्र पे जो टीका लिखी गई वो वेद व्यास ने स्वयं लिखा, वो है श्रीमद भागवतम, है ना। और श्रीमद भागवतम का अंत कहाँ होता है, नाम संकीर्तन। भागवतम की जो अंततः शिक्षाएं हैं वो कहाँ पर होती है, भगवान के नाम संकीर्तन, है ना। कलो दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तनादि व कृष्णस्य मुक्त संग परम। ये कलयुग में क्या है, बहुत सारे दोष, दोष का सागर है, कलो दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा, लेकिन कलयुग में क्या है, एक महान गुण, क्या, कीर्तनादि व कृष्णस्य मुक्त संग परम, कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से हमको परम गति प्राप्त होगी। तो अगर अभी किसी को पूरा वेद नहीं पढ़े हैं, है ना, वेदांत सूत्र नहीं पढ़ा है, लेकिन भगवान का नाम समझ के साथ ले रहा है, अपराध रहित होकर ले रहा है, तो वो वेदों की शिक्षाओं को पालन कर रहा है ना। अब दक्षिण भारत जाएंगे, यहाँ तो क्या है, यहाँ जो भी पंडित है यहाँ सब ऐसे ज्ञान नहीं होता, बस मंत्र। अगर आप साउथ इंडिया जाएंगे तो वहां बहुत सारे लोगों को वेद पता होता है, लेकिन क्या वेदों में उलझ के ले जाते हैं, लेकिन जो नाम संकीर्तन है उसके ऊपर तो नहीं पहुंचते, है ना। ऐसे क्या द्विवेदी चतुर्वेदी त्रिवेदी, तो वेद पता है लेकिन वेदों का उद्देश्य नहीं पता। उनको पता है कि वो सिलेंडर कहाँ से आएगा, नेचुरल गैस ये है, उनको पता है कि गेहूं कैसे लगे, लेकिन रोटी बनाना नहीं आता, करेक्ट। तो वेद इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कृपा बस, है ना, श्रील प्रभुपाद की कृपा है, और खासकर चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्रभुपाद के थ्रू आ रही है, कि जिन्होंने भक्ति को बहुत ही आसान बनाती है चैंटिंग, है ना। जो वेदों को पालन करते करते, कर्म कांड को पालन करते करते आपका हृदय शुद्धिकरण होता कई जन्मों के बाद, फिर आप भक्ति योग में आ पाते। लेकिन आज कितना आसान हो गया है, आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए ध्यान पूर्वक, अपराध रहित होकर आपका हृदय शुद्ध है ना। ऐसे श्रील प्रभुपाद जो अमेरिका गए तो अमेरिका में जो भी संपत्त में आया तो उनका कोई भी पुण्य नहीं था, ने सारे पाप कृत्य किए थे, तो वो वेदों को तो स्पर्श करने के भी योग्य नहीं है। वेदों को पढ़ने के लिए भी क्या है, एक स्तर का शुद्धिकरण चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण महाम संकीर्तन किया, उन्होंने प्रसाद दिया, भगवद गीता सुना, उनका प्यूरिफिकेशन, और इसी जन्म में वो ब्राह्मण बने। जब श्रील प्रभुपाद जब आए अपने शिष्यों को अमेरिका से भारत लेके आए, है ना, तो प्रभुपाद जी ने ब्राह्मण दीक्षा भी दी, जो जनेऊ होता है वो भी उनको दिया। तो यहाँ जो भारत के जो ब्राह्मण थे, जो अपने आप को जन्म से ब्राह्मण मानते हैं, वो लोग विरोध करने लगे कि प्रभुपाद जी इसको, उन्होंने तो पूरा जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उसको भ्रष्ट कर दिया, है ना, कि जो वेस्टर्नर्स हैं, मिलेच्छ हैं, जिनको वैदिक संस्कृति कोई अता पता नहीं है, उनको ब्राह्मण बना दिया, है ना, कितना गलत काम किया, बहुत विरोध हुआ। अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो अभी लोगों को धीरे धीरे समझ आ रही है कि जो ब्राह्मण वैश्य शूद्र ये जो होते हैं वो जन्म से नहीं होते, वो स्वभाव और कर्म से होते हैं, है ना। तो जब प्रभुपाद अपने शिष्यों को लेके आए तो बहुत लोग विरोध कर रहे थे, है ना। लेकिन क्या हुआ कि श्रील प्रभुपाद जी के तिरोभाव के पश्चात, डिसअपीयरेंस के बाद, एक मैगजीन था जिसका नाम था द इलस्ट्रेटेड वीकली, अगर आप लोगों को पता हो, इलस्ट्रेटेड वीकली, तो उसके फ्रंट पेज पर एक फोटो आई, एक डिवोटी है, हस्बैंड वाइफ है, खड़े हैं, वो धोती कुर्ता पहने, वो साड़ी पहने, वेस्टर्नर, तिलक लगाए हैं, और नीचे लिखा है द सेवियर ऑफ हिंदुज्म, हिंदू धर्म को बचाने वाले। तो जिस दिशा में हिंदू धर्म तो नहीं है, सनातन धर्म जा रहा है, उसको बचाया है इसलिए प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी की जो अनुयायी है सिस्टम, उनको बचाया, उनको बताया वास्तव में शास्त्र क्या है, शास्त्रों की शिक्षाएं क्या है, कैसे पालन करना है। नहीं तो आप बाहर देखोगे शास्त्र का पूरा हौच पौच है, पूरा खिचड़ी बना हुआ, पता ही नहीं चलता क्या। तो अलग अलग कुएं में जाने की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग कुएं का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, जो नदी का पानी है उससे सब कुछ पर्पस सॉल्व हो जाए। और भगवद्गीता की शुरुआत में भी जो महात्मा आता है, सर्वोपनिषदों का वो दुग्धा गोपाल नंदन, है ना, कि इन सब शास्त्रों की तुलना, उपनिषदों की तुलना किससे की गई है, एक गाय से की गई है ना, सारे उपनिषद जो है शास्त्र है उनकी तुलना गाय से की गई। और भगवान कृष्ण क्या है, गाय को दूर है, और जो अर्जुन क्या है, एक बछड़े है जो गाय का जो दूध है वो उसको पी रहा है, करेक्ट। तो गाय की तुलना उपनिषद शास्त्रों से, तो गाय का जो एसेंस है वो क्या है, दूध है, करेक्ट। तो सारे शास्त्रों का जो एसेंस है वो क्या है, भगवत गीता। तो समय भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, तो इसीलिए हमें जो भगवत गीता है उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। हम हरि नाम तो ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ये जो स्टडी है, जो बुक रीडिंग है, उसको भी हमें बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। रेगुलर भगवत गीता पढ़ना, उस पर कॉन्टेम्पलेशन करना, उस पर मनन करना, मैंने क्या पढ़ा, और बार बार पढ़ना चाहिए। आप जितनी बार भगवत गीता पढ़ेंगे उतनी बार आपको नई चीजें मिलेंगी, आप देखेंगे अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो कैसे नहीं करना। फिर उसका थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं। The rituals and sacrifices mentioned in the Karmakanda division of the Vedic literature are meant for encourage gradual development of self-realization. वही बता रहे कि जो भी अनुष्ठान है, जो भी कर्मकांड है, वो क्या है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट के लिए। आपको बताया था ना सीढ़ी और लिफ्ट, बताया था सीढ़ी और लिफ्ट। तो वेदों को अगर क्रमशः फॉलो करेंगे तो क्या है, वो सीढ़ी चल रही, सीढ़ी से धीरे धीरे चढ़ते रहे। लेकिन भक्ति योग क्या है, वो लिफ्ट, तुरंत हम ऊपर जा सकते हैं। जैसे एक वृत्तांत आता है कि एक दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण थे, तो उनके जो गुरु हैं उन्होंने उनको बोला कि आप भगवत गीता रोज पढ़ा करिए। तो भगवत गीता रोज पढ़ते थे, लेकिन वो जो श्लोक है उसका अच्छी तरह से उच्चारण नहीं कर पाते थे, आवाज जो शब्द है लड़खड़ाते थे और उसका मीनिंग नहीं समझ पाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत यात्रा में गए, चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि एक ब्राह्मण है जो भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, है ना, और पढ़ते हुए क्या है, उनके आंसू आ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं और आपको आंसू आ रहे हैं, तो आपने भगवत गीता में क्या पढ़, मतलब क्यों आंसू क्यों आ रहे? तो उन्होंने बोला मुझे भगवत गीता तो पढ़ना ही नहीं आता, लेकिन मेरे गुरु की आज्ञा है इसीलिए मैं इसको पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि जब आपको पढ़ना नहीं आता है तो फिर तो रो क्यों रहे आप? तो ब्राह्मण बोलते हैं कि मैं इस चीज को स्मरण करके रो रहा हूं कि भगवान कितने भक्त वत्सल है ना, कि अपने भक्तों के आनंद के लिए वो एक सारथी का भी रोल लेने के लिए तैयार हो, है ना, एक निम्न एक तुच्छ स्थिति है उसको भी उन्होंने स्वीकार किया। जब मैं इस चीज का स्मरण करता हूं तो मुझे क्या आता है, आंसू आ रहे। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि तुमने वास्तव में भगवद गीता को समझ लिया, रियली तुमने भगवद गीता को समझ। तो भगवद गीता का अंततः उद्देश्य क्या है, भगवद गीता पढ़ के हम कहां जाएंगे, जिससे हमें भगवान के जो रूप है नाम है उससे हमें अटैचमेंट हो, भगवान से अटैचमेंट, भगवान के भक्तों से अटैचमेंट। तो उस चीज को जो भगवत गीता का पर्पज है उसको वो समझ गए वो ब्राह्मण, है ना। तो कभी कभी प्रश्न आता है जो पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ना नहीं जानते, वो क्या भक्ति नहीं कर सकते? वही भक्ति कर सकते, भक्ति सबके लिए। ऐसा नहीं जो पढ़े लिखे हैं या जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वही केवल भक्ति में आ सकते हैं, ऐसा नहीं। हर कोई भक्ति में आ सकता है, क्योंकि अगर उसको शास्त्रों का मर्म पता है, पर्पस पता है और उसको फॉलो कर रहा है तो आ जाएगा। करेक्ट। इवन अगर हमने गलत डायरेक्शन में बहुत सारा पढ़ लिया है तो भक्ति में आना बहुत मुश्किल है। कॉलेज में होता है ना, बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पढ़ लिया, बहुत ज्यादा साइंस पढ़ लिया, और स्टीफन हॉकिंस को पढ़ लिया, रिचर्ड डॉकिंस को पढ़ लिया, ऐसे बहुत सारी चीज पढ़ लिया, फिर उनको इजी चीज बताएंगे कि जब करो, क्यों करें, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इससे क्या फायदा होगा, है ना। तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनको एक्सप्लेन करना, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्यों, क्योंकि इतना ज्यादा गंदगी भर गई अंदर, वो गंदगी को निकालने में पूरा जंग चला जाता है ना, बाद में वो हरिनाम को स्वीकार करता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है और उनको आप बताएंगे भगवदगीता का एसेंस बता देंगे, हरिनाम करना है, और बहुत ही अच्छी तरह से वो उसको ग्रहण करते हैं और पालन करते हैं। तो जो भक्ति में जो पूर्णता है, परफेक्शन है, वो पढ़ा लिखा अनपढ़ उस पर कोई निर्भर नहीं करता, है ना। लेकिन अगर किसी को शास्त्रों को पढ़ना जानता है तो अच्छा है कि उसको डिटेल में पढ़े, डीप में जाकर पढ़े। देखो सिंपल, भगवान हमारी सिंसियरिटी को चेक करते हैं। अगर हमको पढ़ना आता है, हम बोले देखो वो तो ब्राह्मण को पढ़ना भी नहीं आता था, वो तो पढ़ता ही नहीं था, और चैतन्य महाप्रभु ने बोला देखो तुम तो भगवद गीता के उद्देश्य को समझ गए इसीलिए हम भी नहीं पढ़ेंगे, तो हम मतलब क्या है, सिंसियर नहीं। भगवान सिंसियरिटी चेक करते हैं, जिसके पास जितनी क्षमता है उसको उतना यूज करना। हनुमान जी ने बड़े बड़े पहाड़ उठाए, पहाड़ उठा के राम सेतु बनाना चालू किया, लेकिन वहां एक गिलहरी थी, वो अपनी पूंछ से ऐसे ऐसे कर रही थी, पूंछ से थोड़े थोड़े कंकड़ कर रही थी। तो हनुमान जी ने बोला कि साइड में, है ना, ये कंकड़ से कुछ नहीं होने वाला, ये पहाड़ जब करेंगे तो उससे ब्रिज बनेगा, है ना, पुल बनेगा। तो भगवान राम को तो ब्रिज की आवश्यकता नहीं है, इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स, इतने बड़े ग्रह जो तैर रहे हैं हवा, वो कैसे तैर रहे हैं, ब्रह्मांड तैर रहे हैं। तो भगवान तो उनको प्लैनेट्स को, पूरे ब्रह्मांड को हवा में तैरा सकते हैं, तो छोटे छोटे पहाड़ क्या है। लेकिन भगवान राम क्या देख रहे हैं कि गिलहरी जो है अपनी पूरी क्षमता उपयोग कर रही है इस पुल को बनाने की, और हनुमान जी भी पूरी क्षमता से उसको उपयोग कर, दोनों में प्रसन्न कर रहे। तो जिसके पास पढ़ा लिखा नहीं कोई दिक्कत नहीं, प्रवचन सुने, हरिनाम करे, सेवा करे, उसको उसको परफेक्शन मिल जाए। और जिसको पढ़ना लिखना आता है, यस, अच्छी तरह से उसको पढ़ाई करे। फिर आगे ऊपर बता रहे हैं, सो वन मस्ट बी इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द वेदास विदाउट बीइंग अट्रैक्टेड टू द रिचुअल्स ओनली एंड मस्ट नॉट डिजायर टू बी एलिवेटेड टू द हेवनली किंगडम्स फॉर ए बेटर क्वालिटी ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। कभी कभी हमें ऐसे लोग प्रचार में मिलते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते, बोले हमें भी तो वेद चाहिए, हम तो वेद पढ़ना चाहते हैं। मिलते हैं ऐसे, मिले आपको कहाँ? हाँ, तो वेद चाहिए, तो वेद पढ़ेंगे। एक्चुअली वेद इतने बड़े हैं कि ये जो कमरा है ना, ये भी छोटा पड़ेगा। वेद ऐसा नहीं, आजकल तो क्या है, ऐसे क्रैश क्रोश चलता है ना, क्रैश कोर्स कर दिया, ऐसे छोटे छोटे वेद को निकाल देते, अथर्ववेद निकाल दिया, सामवेद निकाल दिया। ऐसे क्या आजकल लोग टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं क्या होता है, एग्जाम पास करने के लिए, शिवानी है, और क्या पढ़ते हैं, गाइड बोलते हैं, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते, एग्जाम सब क्या आलसी हो गए, डाइजेस्ट इतने डाइजेस्ट कर पाओगे आप, उससे ज्यादा डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा। तो लोगों को क्या आजकल क्या, सस्ते सस्ते का माल चाहिए, जल्दी चाहिए, इंस्टेंट इंस्टेंट आप भक्त बन जाए, इंस्टेंट भगवत धाम चले जाते, इंस्टेंट कुछ नहीं बनाना, भक्ति पेशेंस, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त्व, कर्म, प्रवर्तना, धैर्य। तो ऐसी क्या वेदों की भी ऐसी छोटी छोटी वो निकाय निकाल सकते, शिवानी निकाल दी,
आधा पढ़ते हैं
उसमें भी, आधा पढ़ते हैं है ना, उसमें भी आधा पढ़ेंगे। तो ये भक्ति कोई ऐसी कोई सस्ती चीज नहीं है, बस थोड़ा बहुत गाइड पढ़ लिया ये हो गया है ना। भगवत गीता तो बोलते हैं तू बहुत मोटी है, इतनी मोटी, आप छोटी दो, आप वो गीता प्रेस की छोटी आती है ना, बोले इतनी मोटी तो कैसे पढ़ेगी। अभी शास्त्रों का सार है, कुछ तो मोटा होगा ना, वेदों का पूरा सार है, कुछ तो होना चाहिए ना, उसमें भी आपको छोटी चाहिए। तो वो तो कई लोग इतनी छोटी रखते हैं पॉकेट साइज, तो वो क्या खुद को धोखा दे रहा है। कुछ तो हमको समय देना होगा, कुछ ना, अपने पैसे कमाने में बहुत बुद्धि चलती है, शास्त्रों को पढ़ने में बुद्धि नहीं चलती हमारी, है ना, ये प्रॉब्लम है। तो ऊपर लिख रहे हैं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द कॉमन मैन इन दिस एज टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द वैदिक रिचुअल्स, नॉर इज इट पॉसिबल टू स्टडी ऑल द वेदांत एंड उपनिषद थरली। इट रिक्वायर्स मच टाइम, एनर्जी, नॉलेज एंड रिसोर्सेज टू एग्जीक्यूट द पर्पस ऑफ द वेदास। दिस इज हार्डली पॉसिबल इन दिस एज। द बेस्ट पर्पस इज वैदिक कल्चर सर्व बाई चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, है ना, एज रिकमेंडेड इन बाई चैतन्य महाप्रभु द डिलीवरर ऑफ ऑल फॉलन सोल्स, है ना। तो वेदों का पर्पस कैसे सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए वो क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलोक क्या है, इति शिवम, इति षोडश का नाम ना नहीं किया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही नहीं किया, इति षोडश का नाम नाम कली कर्मस नाम नाशनम नाता परतम उपाय सर्व वेदेशु दृश्यते सर्व वेदेशु कथ्यते, है ना। इति षोडश का नाम नाम कली कर्मस नाम, ये 16 अक्षरों का जो नाम है, कली कलमश नाश, ये कलयुग के सारे कलमशों को नाश करने वाला, नाता परतम उपाय, इससे श्रेष्ठ कोई उपाय है नहीं, सर्व वेदेशु दृश्य, सारे वेदों में देख लिया, सब वेदों में छान मारा, उसके बाद जो एसेंस आया वो क्या है, 16 अक्षरों का ये हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। तो वेदों के हम एसेंस को पालन कर रहे हैं, हाँ, कली संतरण उपनिषद है, इसमें वेद व्यास जी ठीक है, हम समाप्त करेंगे इसमें और इंक्लूड हो गया प्रवचन में। हरे कृष्ण, किसी कोई प्रश्न है?
जो गौर विश्वदास बाबा जी थे वो तो एलिटेड, मतलब उन्होंने पढ़े, उनको पढ़ना भी आना है, तो उन्होंने वेद कैसे सुने या कैसे पढ़े?
तो गौर विश्वदास बाबा जी महाराज जो है वो एक भौतिक दृष्टि से इलिटरेट थे, है ना, तो उन्होंने कैसे सुने, तो भक्तिमोहन ठाकुर के साथ एसोसिएट करते थे, भक्तिमोहन ठाकुर मिलते थे, डिस्कशन होता था उनका, और वेदों का जो परम उद्देश्य है कि इस भौतिक जगत से पूरी तरह से निराशक्ति और भगवान के नाम में रुचि, उस चीज को पालन कर रहे थे, उनका पूरा जीवन और जिस तरह से जप करते थे वो उसको पालन कर रहे हैं। किसी ने वेद बहुत पढ़ लिए और जप नहीं कर रहा है, कुछ पालन नहीं कर रहा है, तो वेद पढ़ने का मतलब नहीं है, लेकिन वो उस चीज को पालन ही कर रहे हैं। और भक्तिमय ठाकुर से मिलना जुलना और चर्चा करना तो होते ही था,
ये तो उसी की तरह होगा कि जैसे चैतन्य महाप्रभु मिले थे उनसे, वो रो रहे थे, उनको देखे, मतलब उन्होंने एसेंस उसका समझ लिया,
एसेंस समझ लिया।
हाँ, तो पढ़ना इससे मतलब पढ़ना इतना, अगर किसी को नहीं भी आता तो समझ गए तो
मेन चीज क्या है, सिंसियरिटी। पढ़ना नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप शुद्ध भक्त बन सकते, पढ़ना आता है तो आपको इंटेलिजेंस यूज की, ऐसे ही सुना अच्छा है, पढ़ा लिखा नहीं होता तो ये पढ़ने ही पड़ता है, ऐसा नहीं है। ये क्या, माइंड चीट करता है, माइंड बहुत चीट करता है। उस समय फिर हम दूसरा बहाना निकालते हैं, अगर पढ़े लिखे नहीं, पढ़ा लिखना नहीं आता तो उस समय तो कोई दूसरा बहाना निकालते है ना, तो माइंड तो क्या बहाना निकालता है, तो इसीलिए हम बच नहीं सकते। इसलिए सबको, आप सब लोगों को टाइम निकालना, अभी आपका सेकेंड ईयर है तो रिलेटिवली थोड़ा टाइम ज्यादा है, फिर बाद में धीरे धीरे टाइम कम मिलेगा, तो आप अच्छी तरह से पढ़िए भगवत गीता, है ना। और कुछ, ओके, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद भगवद गीता जय।